मेरे अजीज साथियों नमस्कार। आज 19 जुलाई 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के मुख्य विषय के रूप में हम बात करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति के बारे में, क्योंकि इस बीच मैंने आप सबसे ये अर्ज किया था कि यदि इस विषय पर आप कुछ जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आप मुझे मेल के द्वारा सूचित करें। बहुत से स्टूडेंट्स ने अपनी यह इच्छा जाहिर की है और अभी अभी राष्ट्रपति जी के चुनाव भी हुए हैं, तो समय भी बहुत उपयुक्त है, तो आज के लिए मैंने इसी विषय का चुनाव किया है। फ्रेंड्स, अब जहां तक न्यूज की बात है, तो कल की रेडियो न्यूज भी आपने सुनी होगी, डीडी न्यूज भी आपने देखी होगी। मैं दोनों न्यूज की जनरली बात करता हूं, चैनल्स वगैरह भी मैं देखता हूं, आप सब भी देखते होंगे, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण न्यूज उतनी नहीं होती। फिर भी ऐसा भी नहीं है कि वो अर्थहीन होते हैं, लेकिन हमारा काम डीडी न्यूज से चल जाता है। खैर, तो आपने महसूस किया होगा कि न्यूज में कुछ खास बातें थी नहीं। मैं सिविल सर्विस की दृष्टि से कह रहा हूं, कोई ऐसी बात नहीं थी जिसे हम बहुत महत्वपूर्ण मान सकें। लेकिन एक बात की तरफ मैं आपको जरूर इशारा करना चाहूंगा, जो सीधे सीधे न्यूज तो नहीं होती है, लेकिन उसके पीछे जो व्यूज होते हैं या जो पैटर्न काम कर रहा होता है, वो एग्जामिनेशन की दृष्टि से कम इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ये सीधे सीधे न्यूज नहीं होती, लेकिन महत्वपूर्ण होती है, हम उसके बारे में जाने। जैसे आपने रेडियो न्यूज में सुना होगा कि कल जो है राज्यसभा का जो सत्र था वो बाधित हुआ है ना, और काफी ये न्यूज हाईलाइट भी हुई है। राज्यसभा दो बार स्थगित करनी पड़ी और बाद में फिर मायावती जी ने राज्यसभा पर यह आरोप लगाते हुए कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा तक दे दिया है, सौंप दिया है। ये खबर काफी हाईलाइट हो रही है और इस पर सच पूछे तो एक्सपर्ट कमेंट्स भी आते रहे। ठीक है, वो एक राजनीतिक मुद्दे की बात है, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। सिविल सर्विस के लिहाज से यहां क्या बनता है, जो मैंने कहा कि ये एक घटना है, इस घटना के पीछे कौन सी पॉलिटी है, राजनीति या संसद या संविधान, कौन से तत्व काम कर रहे हैं सिविल सर्विस में, इसको लेकर के किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये सेंस मुझे लगता है कि सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के अंदर डेवलप होनी चाहिए। अब देखिए, मैंने जो निष्कर्ष निकाला है खासकर इस घटना को लेकर के, तो एक बहुत अच्छा आधार तो हमारे पास होता ही है कि हम अनसॉल्व्ड पेपर लगातार देखते रहें कि किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको अनसॉल्व्ड पेपर में मेंस में आपको मिल जाएगा कि जो हमारे संसद की जो कार्य प्रणाली है या संसद जिस तरीके से काम कर रही है वो कितनी उचित है, कितनी नहीं है, उसमें क्या कमियां हैं, क्या और होना चाहिए, इस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। यहां भी लगभग वही बात है कि संसद जो है हमारी महापंचायत है, कह लीजिए कि एक बातचीत करने का फोरम है जहां की हमारे देश के चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं और राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करके देश के लिए विधान का निर्माण करते हैं और उसी आधार पर समाज को व्यवस्था मिलती है और विकास को आगे बढ़ाने का संकल्प भी होता है। मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण, कह लीजिए बहुत ही पवित्र और सर्वोच्च संस्थान होती है संसद, राइट। और उसके जो खर्च भी हैं आप सुन करके दंग रह जाएंगे कि प्रति मिनट उसका कितना खर्च होता है। तो मित्रों, अब अगर हम ये देखें कि अगर इस तरह के हंगामे होते हैं, रीजन कोई भी हो, कोई भी पार्टी करे, किसी भी कारण से अगर हमारे संसद के अधिवेशन नहीं हो पा रहे हैं, तो बट नेचुरल है कि एक राष्ट्रीय चिंता का कारण होता है। और आपने महसूस किया होगा कि इसको लेकर बीच बीच में काफी लेख भी लिखे जाते हैं, लेख भी काफी आते रहते हैं। यहां तक ये देखा गया है कि अगर बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक भी क्यों न हो, लेकिन उन पर फिर संसद में जरूरी बहस नहीं होती है। यही होता है संसद का बायकॉट कर रहे हैं, अभी से नहीं, शुरू से ही एक लगभग स्थिति रही है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि ये कहीं ये भारत की स्थिति नहीं है, ये दुनिया के लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों की स्थिति है। मतलब आप ऐसा मत समझिएगा कि हमारे यहां ही ये सब होता है, सभी जगह होता है। शायद कार्यप्रणाली ही कुछ ऐसी है, या ये कह लीजिए कि अपना विरोध व्यक्त करने का एक तरीका, एक सबसे प्रभावशाली तरीका ही यही है, जो भी हो। तो मित्रों, इसको लेकर के प्रश्न उठाए जाते हैं। संसद ने अपना कितना कार्य किया, संसद का मतलब दोनों लोकसभा और राज्यसभा, कितने घंटे काम किया, कितने प्रतिशत काम किया, ये भी आंकड़े आपको बीच बीच में मिलते रहते हैं, इस पर आपका ध्यान होना चाहिए। एक बात मैं यहां आपको तथ्य के रूप में बताना चाहूंगा, और वो ये दोस्तों कि भारत में जो एक साल में जो संसद की बैठकें होती हैं सामान्य तौर पर वो लगभग 110 से 120 के आसपास होती हैं, 125 मान लीजिए मोटे तौर पर। जबकि ये देखा गया है कि जो डेवलप्ड कंट्री है, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन ही क्यों ना हो, तो वहां जो संसद की जो बैठकें होती हैं वो लगभग लगभग 150 दिनों की होती हैं, 150-250 दिनों के बीच की होती है, मतलब सत्र के दिन ही वहां ज्यादा रखे जाते हैं, हमारे यहां अपेक्षाकृत वो थोड़े कम है। तो ये एक तथ्य है, मैंने कुछ एंगल्स आपको बताए हैं लोकतांत्रिक आधार पर, दायित्वों के आधार पर कि एक विधायिका के क्या दायित्व हैं, क्या होने चाहिए, हमारी अपनी क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये कुछ ऐसे एंगल हो सकते हैं जिनको लेकर आपको संसद के इस ये जो पद्धति है जो बाधित होती हैं या स्थगित होते हैं, इनके बारे में एक एनालिसिस कर सकते हैं और आप अपने निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं। तो मित्रों, अगर कभी अवसर आया तो हम इस पर स्वतंत्र रूप से बात करेंगे। फ्रेंड्स, आइए अब मैं आपको इससे पहले कि मुख्य विषय पर आऊं एक छोटा सा फैक्ट बताता हूं, फैक्ट ऑफ द डे। आप देखिए कि समाज कैसे बदलता है। समाज बदलता है मतलब कुछ समय पहले जिसे समाज एकदम अस्वीकार करता है, बाद में कैसे उसे समाज स्वीकार कर लेता है। और ये केवल भारत में ही नहीं, ये दुनिया के सभी देशों में, क्योंकि सामाजिक विकास या सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया ही यही होती है। आप सोच करके देखिए कि क्या भारत में कुछ साल पहले, कुछ साल नहीं 25 साल पहले, क्या सहजीवन को मान्यता दी जा सकती थी। सहजीवन का मतलब है जिसको कहते हैं हम साथ में रहना, रिलेशनशिप, जहां की अविवाहित लड़के लड़कियां एक साथ रह रहे हैं, इसको हम मान्यता नहीं देते थे। लेकिन आज वह लीगलाइज है, बकायदे विधानसभाओं ने उसके पक्ष में कानून पारित किए। तो समाज में विकास की जो प्रक्रिया है ये मालूम होना चाहिए, खासकर सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को तो विशेष रूप से। और आप देखेंगे कि आपका मेंस का जो फर्स्ट पेपर है उसमें सोशियोलॉजी है। आइए मैं आपको इसके बारे में एक तथ्य बताता हूं, और ये तथ्य भी अमेरिका से जुड़ा हुआ तथ्य है जिसे हम बहुत ही एडवांस्ड कंट्री मानते हैं, राइट। चाहे तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं, अपने निबंध वगैरह में इसका आप उपयोग कर सकते हैं, यहां तक कि आप मेंस के आंसर में भी लिख सकते हैं। मित्रों, मैं सन 1998 में, बहुत दिनों की बात नहीं, आज से 19 साल पहले की बात बता रहा हूं, 1998 में एक थे मैथ्यू शेफर्ड नाम था उनका, और उनकी हत्या इसलिए कर दी गई थी क्योंकि वो समलैंगिक थे। अमेरिका में बाद में एक कानून बना और उस कानून का नाम है मैथ्यू शेफर्ड हेट क्राइम प्रिवेंशन एक्ट। ये कानून बना और ये देखिए मैथ्यू शेफर्ड के नाम पर ही है। और इस कानून का उद्देश्य है अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देना, मतलब सेफ गार्ड सिक्योरिटी ऑफ माइनॉरिटी, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू माइनॉरिटी। और मजेदार बात देखिए कि इस एक्ट पर जिस समय अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा जी साइन कर रहे थे, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ मैथ्यू के परिवार के सदस्य भी थे। आप देख रहे हैं कहां उस समय हत्या की गई और कहां उनके परिवार को अब इतना बड़ा सम्मान दिया गया, और उनको इतना बड़ा सम्मान दिया गया कि उनके नाम पर एक एक्ट ही बना दिया गया। तो दोस्तों, ये समाज की ओपननेस है और समाज की एक बहुत बड़ी अंतर्निहित शक्ति भी है कि कुछ समय पहले तक वो जिन तथ्यों का बहुत जबरदस्त रूप से विरोध करती है, आप देखिए कि ये उसकी उदारता भी है कि जरूरत पड़ने पर वह उसका सम्मान भी करती है। तो मित्रों, इस सत्य के बाद, इस तथ्य के बाद, आइए अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं आज के मुख्य विषय पर, और वह है राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति। मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रपति के चुनाव पर प्रश्न आ सकते हैं, प्री में, मेंस में भी, लेकिन मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे। मैं थोड़ी सी चीजें आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। पहली बात तो यह है, फ्रेंड्स, हम बात कर चुके हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में देखिए राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित शब्द याद रखिएगा, प्लस विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, वहां भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। याद रखिए कि जो नामांकित सदस्य हैं, चाहे वो किसी के द्वारा हो, वो भाग नहीं लेते हैं। और साथ ही साथ बहुत से राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है, विधान परिषद भी है, विधान परिषद के सदस्य भी इसमें भाग नहीं लेते हैं, ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए। प्री में आपको इसी तरीके से कूट बना बना करके उलझाने की कोशिश की जाएंगी, राइट। अब देखिए जो चुनाव की पद्धति है उसमें दो शब्द हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। उसके लिए जो हिंदी का शब्द है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार, आनुपातिक प्रतिनिधित्व इसका क्या मतलब हुआ, फिर एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान, ये तीन शब्द मिलेगा। तो मतदान तो ठीक है गुप्त होता है, व्हीप इस पर जारी नहीं किया जा सकता है, हम बात कर चुके हैं। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इस पर हम बात करेंगे। देखिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो लोग भाग ले रहे हैं, जितने भी लोग भाग ले रहे हैं उनका प्रतिनिधित्व समान हो। देखिए कौन भाग ले रहे हैं, अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। पहला तो यह है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भाग ले रहे हैं, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। दूसरा कौन भाग ले रहा है, सभी राज्यों के विधानसभा के सदस्य जिन्हें हम एमएलए कहते हैं, ये भाग ले रहे हैं, राइट। तो अब दो समान प्रतिनिधित्व को देखिए, इसको दो भागों में डिवाइड कीजिए। चलिए हम सबसे पहले एमएलए पर आते हैं। आपके दिमाग में आएगा कि एमएलए को कैसे समान प्रतिनिधित्व है। जैसे आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, 400 से अधिक एमएलए हैं, तो वहां के एमएलए के पास ताकत ज्यादा है ना। और हमारे नॉर्थ ईस्ट के छोटे छोटे राज्य हैं, यहां तक कि साउथ के भी कुछ छोटे राज्य हैं, नॉर्थ में भी आप देखिए छत्तीसगढ़ छोटा सा राज्य है, तो इनके पास तो बहुत थोड़े से एमएलए हैं, 125 एमएलए ही है मुश्किल से, तो इनके पास तो कम ताकत हो गई। नहीं, आपको समान प्रतिनिधित्व को इस तरीके से समझना होगा, जो बहुत जरूरी है वो ये है कि हमारे जो एमएलए हैं, सामान्य तौर पर जो विधानसभा क्षेत्र बनाए गए हैं वो पॉपुलेशन के आधार पर भी बनाए गए हैं, उसके अलग सूत्र है पॉपुलेशन और एरिया को लेकर के, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा अर्थ रखता है कि वो कितनी जनसंख्या को प्रतिनिधित्व करेगा। अब आप देखिए कि दिल्ली में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं, कई हैं, और एरिया तो उतना बड़ा नहीं है, 7 पार्लियामेंट मेंबर हैं या कुछ इसी तरह से, एग्जैक्ट नंबर आप देख लीजिएगा, लेकिन 7 से कम तो नहीं है। और राज्य विधानसभा ही देख लीजिए कि उतना बड़ा एरिया है और राज्य विधानसभा के कितने सदस्य हैं, तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो समान प्रतिनिधित्व का क्या अर्थ हुआ, देखिए समान प्रतिनिधित्व का अर्थ हुआ जनसंख्या के आधार पर, उनके जो वोटों का मूल्य है वो इस आधार पर निर्धारित किया गया है कि वो कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और जनसंख्या के प्रतिनिधित्व के अनुपात में सबको समान अधिकार दिया गया है। उदाहरण के तौर पर देखिए, शायद इससे बात ज्यादा स्पष्ट हो कि एक विधानसभा के सदस्य का मूल्य कितना होगा, क्योंकि सभी विधानसभा के सदस्यों के मूल्य अलग अलग होंगे। जो मध्य प्रदेश के एमएलए की जो वोटिंग वैल्यू होगी वो उत्तर प्रदेश की नहीं होगी, नागालैंड की नहीं होगी, सबकी अलग अलग होगी। और क्यों अलग अलग होगी, इसका बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है। राज्य की जितनी भी कुल जनसंख्या है, मान लीजिए कि राज्य की जनसंख्या 100 लाख है, मान लीजिए राज्य की जनसंख्या 1 करोड़ है, 100 लाख, ठीक है, और वहां जो एमएलए की जो सीट रखी गई है वो 100 रखी गई है, मान लीजिए 100 रखी गई है, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि पहले आप 100 लाख में 100 का भाग देंगे, 100 लाख में मतलब एक जो वहां का एमएलए है वह 1 लाख लोगों की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा है, 1 लाख लोगों की जनसंख्या, राइट। उसको आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए, सिंपल सा फॉर्म। अब 1 लाख संख्या नहीं रखी गई है तो उसको और थोड़ा सा कम बना दिया गया है, उसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो यह हो गया कि या इस राज्य के जो एमएलए होंगे उनकी जो वोट वैल्यू हो जाएगी, अब 1 लाख को आप 100 से डिवाइड कर दीजिए, अब आप देख लीजिए कि कितना आंकड़ा आएगा, 1000, जो भी आंकड़ा आता है उतना उनके वोट का वैल्यू, उतनी उनके वोट की वैल्यू हो गई। अब सभी राज्यों में यही कर दिया गया, तो राज्यों की वोट की वैल्यूज तो अलग अलग हो गई लेकिन जनसंख्या के आधार पर उसका विभाजन किया गया, तो यहां समान प्रतिनिधित्व हो गया। इसी समान प्रतिनिधित्व को आप दूसरे रूप में देखिए, एक तरफ तो राज्य की विधानसभाओं की ताकत हो गई, मतलब मान लीजिए कि राज्य की विधानसभाओं की कुल ताकत 5 लाख वोट की हुई, इनको जोड़ दिया गया कि 5 लाख वोट, तो राज्य एक पलड़े पर है। दूसरे पलड़े पर है केंद्र यानी कि संसद, लोकसभा और विधानसभा। तो अब क्या किया गया, इन दोनों को भी समान वजन का बना दिया गया। यहां यह नहीं किया गया कि राज्य का पलड़ा भारी हो, राज्यों की ताकत ज्यादा हो या केंद्र की ताकत ज्यादा हो, ऐसा नहीं किया गया। तो अब क्या किया गया कि राज्य की जितने विधानसभाएं थे, जितने भी एमएलए हैं, उन एमएलए के वोट की वैल्यू कितनी हुई जोड़ ली गई, तो वोट की वैल्यू हुई मान लीजिए 5 लाख, ठीक है। अब इन 5 लाख वोटों को जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की जितनी संख्या है उसमें डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। चलिए मैं अभी सिंप्लीफाई इसको कर देता हूं, इनकी टोटल वैल्यू हुई 5 लाख। अब मान लीजिए कि हमारे लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 1000 है, तो अब 5 लाख में आप 1000 का भाग दे दीजिए, अब जितना आएगा, अब जो आंकड़ा आएगा उतनी वैल्यू लोकसभा और राज्यसभा के एक एक सदस्यों की हो जाएगी, यानी कि राज्यों की कुल वोटों की जो वैल्यू थी उतने ही वोटों की वैल्यू संसद की भी हो गई, और यहां संसद और राज्य दोनों समान हो गए। मित्रों यह है समानुपातिक। अब इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, पता नहीं मैं कितने सरल तरीके से आपको समझा पाया हूं, हो सकता है कि थोड़ा सा आपको जटिल भी लग रहा हो। इसके दो आधार हैं। पहला आधार है कि राज्यों का प्रतिनिधित्व समान हो, यानी कि जो बड़े राज्य हैं एमएलए उस रूप में ठीक है कि टोटल वोट लेंगे तो एक पर्टिकुलर राज्य के ज्यादा होंगे, लेकिन हम यहां इंडिविजुअल ले रहे हैं, है ना, कि उनको एक एक एमएलए जो प्रतिनिधित्व कर रहा है वो लगभग जनसंख्या समान है चूंकि, तो वह भी लगभग आसपास ही आएगा। राज्यों का समान प्रतिनिधित्व हो, नंबर वन, और दूसरा राज्यों और संघ के बीच भी समानता हो, ये दो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व। मित्रों अब वक्त नहीं बचा है कि मैं आपको एकल संक्रमणीय मत के बारे में बता सकूं, क्योंकि वह भी थोड़े से वक्त की मांग करता है, बहुत संभव है कि हम लोग इस पर कल बात करें। तो मित्रों अब मैं प्रेस क्लिपिंग्स पर आता हूं और मैं आपको प्रेस क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं, बस इतना ही बताने का वक्त है, आप अपनी जरूरत के हिसाब से प्रेस क्लिपिंग्स देख लेंगे। और अब अंतिम चरण में मैं स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं शलभ श्रीवास्तव रायसेन मध्य प्रदेश से और मधु बाला कानपुर उत्तर प्रदेश से। तो आप दोनों साथियों का मित्रों में एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करने की इजाजत भी चाहता हूं। नमस्कार।